What are the differences? Please tell me, boy versus man.
जहाँ हो आप अपने बलबूते पे हो, जैसे हो आप, बहुत comfortable हो अपने आप. तो ये is the biggest difference, the sense of security as a human being between a boy and a man.
Relationship के red flags क्या हैं?
तुम अपना decision खुद तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे life का. That's a big red flag. इसके साथ मैंने life में पहली बार date किया था 9th 10th class के अंदर. उसने मुझे छोड़ दिया था abruptly, ये कह के कि मुझे 10th class की तैयारी करनी है. उस टाइम पे पीसीओ लैंडलाइन का ज्यादा ही था, तो वो मैं दो दो रुपए के सिक्के मैंने डाल डाल के पीसीओ के बूथ में इतना रोई हूँ मैं. तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कोई मेरी ऐसी हालत कर सके.
हाउ मच मनी डिड यू मेक इन फर्स्ट मूवी?
5 लाख रुपए मिले थे. मेरा होता है कि जो आए हैं ना वो अपने पे मैं उड़ा दूंगी. मैं गरीब मरना पसंद करूंगी, मैं गरीब जीना नहीं पसंद करूंगी.
टैलेंट के अलावा क्या क्या चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ग्रो?
अच्छी किस्मत
उसके अलावा. और
मेरे करियर में कोई मेरा गॉडफादर नहीं है.
इज इट डिफिकल्ट टू डेट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर? हम ये पॉडकास्ट की हर कॉन्वर्जेशन के थ्रू ट्राई करते हैं कि हम सब एक बेहतर इंसान कैसे बन सकें. एंड आज की जो हमारी गेस्ट हैं तापसी पन्नू, इन्होंने बैक टू बैक ऐसी मूवीज करी है जो हमें एक बेहतर नज़रिया दिखाती है लाइफ का और बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती है. इनकी एक मूवी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, उसका नाम था थप्पड़. एंड उस मूवी में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, पर मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पॉइंट था क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करी उसके बाद चीज़ें जो मैंने मेरे आसपास देखी थी. आज के गेस्ट ने मुझे कॉन्वर्जेशन के बीच में एक बात बोली कि राज, लाइफ में हर किसी को पाम ट्री जैसा बनना है, बहुत जल्दी से ग्रो करना है, बहुत स्ट्रेंथफुल दिखना है, बहुत ताकतवर दिखना है, गॉर्जियस दिखना है. बट जैसे ही एक हवा का झोंका आएगा ना, बहुत तेज़ी से अगर तूफान आया तो टूट जाएगा. तो लाइफ में पाम ट्री बनने की कोशिश मत करो, मनी प्लांट बनो. क्योंकि मनी प्लांट कैसा होता है, वो कहीं से भी कैसे भी निकल के अपना रास्ता ढूंढ लेता है और बढ़ते ही जाता है अगर उसे बढ़ना हो तो. तो आज का पॉडकास्ट भी बहुत सारी इनकी अनयूजुअल चॉइसेस, लाइफ पर्सपेक्टिव्स और इन्होंने लाइफ में क्या क्या सीखा जिसकी वजह से ये आउटसाइडर होने के बाद भी एक बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बन गई. तो हमने इन सब के बारे में बात करी है. Enjoy the show. Before you enjoy the show, Rajshamani Clips और Rajshamani Shorts चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए लेके आते हैं छोटे टाइम में, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके. Enjoy the show with तापसी पन्नू. Let's talk about your journey a little. पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं.
This एक्टर कब बनना डिसाइड किया वो मैं बोलती हूँ पहली पिक्चर के बाद.
सच्ची में?
हाँ,
क्या बात है. तो पहली पिक्चर कैसे मिली?
पहली पिक्चर क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रही थी दिल्ली में, क्यों वो भी इसलिए क्योंकि मुझे थोड़े पैसे कमाने थे, क्योंकि घर में
रियलिटी शो में थे ना चैनल वी के
गेट गॉड सेलेक्ट नहीं हुई थी. मतलब जो उनका चैनल के अंदर शो आता है फाइनल कंटेस्टेंट्स का, उसमें नहीं सेलेक्ट हुई थी. दिल्ली में से सेलेक्ट किया था उन लोगों ने मुझे, बट इवेंचुअली आई डिडंट मेक इट टू द टॉप फ्यू हु वर देयर एट द शो. तो ये सब मैंने ना बहुत टिपिकल दैट यू नो वो मेंटालिटी नहीं होती मिडिल क्लास की, अच्छा चलो इन्होंने बोला एप्लीकेशन खुली है तो मतलब मैं अप्लाई करती हूँ, हो जाऊंगी सिलेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सही दिख रही हूँ. मतलब तुम्हें तो मैं बेस्ट हूँ. वो जो एटीट्यूड था कि मतलब मैं तो अच्छी दिख रही हूँ यार, मैं जा सकती हूँ, वो मेरा एटीट्यूड उस टाइम पे था. मेरे में दिमाग भी थोड़ा बहुत है मुझे लगता था, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्टूडेंट थी. मतलब मैं अपने स्कूल और कॉलेज को काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट कर चुकी थी, तो मुझे था कि मैं ठीक ठाक संभाल लूंगी अपने आप को इस तरह की चीज में. ओनली आफ्टर आई स्टेप्ड इनटू इट आई रियलाइज कि ये मेरे लिए नहीं है. मतलब यहाँ नहीं हो सकता मेरा कुछ. हाँ, मैंने 6 महीने मॉडलिंग करी, वो भी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, क्योंकि घर से मुझे घर खर्ची मिलती नहीं थी. वो बोला जाता था कि जो चाहिए बताओ, अगर हमें रीजनेबल लगेगा कि तुम्हारी मांग जो है तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. अब मुझे होता था, पता नहीं मेरे घर वाले भी मानते हैं, तुम तो अलग ही शाही खानदान के पैदा हुए हो घर में, क्योंकि बाकी जो मेरे घर के 3 फैमिली मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग माय सिस्टर मदर फादर, वो उनका खर्ची का तरीका इज टोटली ऑपोजिट मेरे से. वो ऐसे खर्च करते हैं सोच सोच के कि मतलब अपने साथ पैसे लेके ही जाएंगे, मतलब कहीं यहाँ खर्च ना हो जाए, किसी और को मिल ना जाए हमारे पैसे. और मेरा होता है कि जो आए हैं ना वो अपने पे मैं उड़ा दूंगी, क्योंकि मुझे रोज रोजमर्रा की खुशी जो है मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
अभी भी ऐसे करते हो?
मैं गरीब मरना पसंद करूंगी, मैं गरीब जीना नहीं पसंद करूंगी. तो ये नजरिए से मैंने मॉडलिंग शुरू करी थी और मैं इंजीनियरिंग कर रही थी साथ साथ में, क्योंकि मुझे पढ़ाई का जेन्युइनली शौक था.
ओके.
मेरे को किसी ने पुश नहीं किया था कि आप इंजीनियर बनूँ या ये करो. मैं मैथ्स में जेन्युइनली अच्छी थी, फिजिक्स मुझे जेन्युइनली पसंद थी, इसलिए मुझे लगा इंजीनियरिंग शुड बी एन आइडियल केस सिनेरियो फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि डॉक्टर बनते बनते तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी. मैथ्स और फिजिक्स पसंद है, मतलब साइंस में मैं ओवरऑल अच्छी थी, बट मुझे पता था कि बायोलॉजी एंड देन डॉक्टर वो कभी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती, जितना आप कर लो उतना कम है वाला हिसाब होता है डॉक्टर बनने में. तो मैंने कहा ये इतना पेशेंस नहीं है, एक ही लाइफ है, मुझे बहुत कुछ करना है. तो 4 साल में हो रही है इंजीनियरिंग, वो करते हैं अच्छे से, मैथ्स वैथ अपनी बढ़िया है तो वो कर लेंगे.
ठीक है,
तो वो कर ली मैंने, और वो सेकेंड ईयर में ही मुझे बट रियलाइज हो गया कि ये तो मुझे उस दिशा में लेके जा रहा है जहाँ पे 9 से 5 की नौकरी करनी पड़ेगी, यही फ्यूचर है इस डायरेक्शन का. तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि मुझे ना मोनोटनी जो होता है ना रोजमर्रा का, वही घिसा पिटा साइकिल जो होता है, वो मुझे बहुत डर लगता है उससे, कि वो जो मेरे को लगता है कि मैं मर जाऊंगी अपने मरने से पहले अगर मेरा ऐसी मोनोटनस लाइफ रही. तो ये वाली लाइफ को ढूंढते ढूंढते आई थिंक आई एंडेड अप कमिंग हियर. जब मॉडलिंग के वजह से मेरी पिक्चर्स एंड जो फोटोज वगैरह जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास थी, साउथ से बहुत कॉल आए. मैंने बोला मुझे ना एक्टिंग आती है देखो, ना लैंग्वेज आती है, आप बाकी संभाल लो, अगर आपको लगता है मेरे को फिर भी लेना चाहते हो तो. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप स्क्रीन टेस्ट दो आके, हमें देखना चाहते हैं आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कैसी है. तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया, और एज आई ऑलवेज से लक लाइन इन माई हैंड इज स्ट्रॉन्गर देन माई लाइफ लाइन. तो मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया, उनको लगा कि आई फिट द बिल, उनके जो रिक्वायरमेंट थी कैरेक्टर की. तो एक तमिल एक तेलुगु फिल्म मैंने साथ में साइन कर ली,
दो मूवीज एक साथ.
हाँ, क्योंकि मैंने ये अपने पापा को बोला था कि मुझे 1 साल दो अपनी लाइफ में से, ये 1 साल मैं ट्राई करूंगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आके मैं MBA करूंगी, मुझे भी पढ़ने का शौक है. तो वो 1 साल में मैंने इसका जितना कोशिश कर सकते ना अच्छे से कर लेते हैं. एंड मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे यही करना है, मैं ट्राई कर रही थी, अगर मजा आता है तो ठीक है, मतलब मजा नहीं आया तो मैं करूंगी ही नहीं, ये तो मैंने सोच लिया था लाइफ में, वो आगे कुछ नहीं करूंगी जो मुझे मजा नहीं आ रहा जो करके.
तो मजा टॉप प्रायोरिटी,
मजा इज टॉप प्रायोरिटी. अब वो मजा कैन बी टेकन फ्रिवोलसली, बट मैं मजा इन द सेंस आई शुड लुक फॉरवर्ड टू, मतलब मैं बोर नहीं होना चाहती,
आई शुड बी एक्साइटेड, मतलब मैं रोज सुबह उठूंगी यार चलो आज जाना है काम.
हाँ, क्योंकि एक ही लाइफ है, मुझे दोबारा दोबारा जीने को नहीं मिलेगी. ये टाइम जो चला गया, पैसे कमाए जा सकते हैं दोबारा, समय कभी वापस नहीं आता, तो मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना था लाइफ का.
व्हाट वाज द फर्स्ट, हाउ मच मनी डिड यू मेक इन फर्स्ट मूवी, कितने पैसे मिलते हैं फर्स्ट मूवी के?
पहली फिल्म जो साइन करी थी दोनों में सेम मिले, 5 लाख रुपए मिले थे
पूरी पिक्चर करने. और कितना टाइम देना पड़ता है एक मूवी के लिए?
35-40 दिन तो लगते हैं.
ओके, और प्री पोस्ट प्रिपरेशन भी?
हाँ, प्री पोस्ट प्रिपरेशन, और आप 2-3 हफ्ते लगा लो.
अच्छा,
तो वो वहां से सीखते 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 3 साल वहां गुजारे.
तमिल एंड तेलुगु 3 साल ये मूवीज. हाँ, तो आपको तमिल और तेलुगु आती थी? नहीं
बिल्कुल सुनी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी. तो वहां पे क्या होता था कि आप पहुंचो तो मेरे एक तो द फिल्म दैट आई वाज डूइंग इन तमिल वो थी एकदम रूटेड, एकदम वो फिल्म जिसको 6 नेशनल अवार्ड मिले थे.
हाँ,
ऐसी जबरदस्त डायरेक्टर, धनुष के ऑपोजिट बेट्री मारन वाज अ डायरेक्टर, मतलब उससे ज्यादा रियलिस्टिक सिनेमा, हार्ड हिटिंग सिनेमा पता नहीं कितने लोग बनाते हैं इस कंट्री में. एंड ऑपोजिट साइड पर तेलुगु फिल्म जो राघवेंद्र राव जी ने डायरेक्ट करी, जो जिन्होंने श्रीदेवी जयसुदा ऐसे एक्ट्रेसेस लॉन्च करने के लिए माने जाते हैं कि एक एक्ट्रेसेस जो है उनके साथ काम एक बिग बकेट लिस्ट होती थी कि इनके साथ जरूर काम करना, क्योंकि जैसे ये अपनी एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं वैसे कोई और नहीं करता. वो उस टाइम से, और मेरी जो पिक्चर थी वो इनकी 105th फिल्म थी जिसमें वो मुझे लॉन्च कर रहे थे. तो आधी हवा तो इंडस्ट्री में यही फैल गई थी कि राघवेंद्र राव एक नई लड़की दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, तो कोई होगी, मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर. तो मेरा आधा काम वहीं हो गया था.
तो हवा ने काम कर दिया था
मेरे लिए. वो अलग बात है कि स्ट्रगल शुरू हुआ पहली पिक्चर के बाद कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हवा बन गई, अब इसको लिव अप टू कैसे करे कोई बंदा अब तो. मतलब फिर मुझे सीखना शुरू करा मैंने, तभी मैं बोलती हूँ पहली पिक्चर के बाद मैंने डिसाइड किया चलो अब ढंग से करते
एक्टर
हैं, अब एक्टर बनते हैं, अब सीखते हैं फ्रॉम स्क्रैच.
यू नो आजकल से सोशल मीडिया पे पीपल आर बिकमिंग रियली फेमस, डू यू फील कि इससे फर्क पड़ता है लोग एक्टिंग में नहीं आ सकते, क्योंकि लोगों ने देख लिया उनको इतना ज्यादा बोर हो गए तो नाउ दे कांट बी लॉन्च्ड एज लाइक अ न्यू फेस. बहुत सारा डिबेट चलता है इस पे कि क्रिएटर्स नहीं बन सकते क्योंकि क्रिएटर्स ओवर एक्सपोज्ड हैं. आई हर्ड लाइक अ वेरी बिग डायरेक्टर से समवेयर, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था हॉलीवुड, एंड ही सेड कि क्रिएटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो है, एक है कि क्रिएटर्स के अंदर टीम नहीं है, तूने पता है क्रिएटर्स खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही एक्टर है, खुद ही स्टाइलिस्ट है, खुद ही, तो उनको पता ही नहीं कि मैं मार्केटिंग में फोकस करूँ कि एक्टिंग में फोकस करूँ कि किस पे फोकस करूँ, तो उनको नहीं पता क्या चूज करके कैसे बड़ा बनना चाहिए. दैट इज वन प्रॉब्लम. सेकंड इज वो इतना ओवर एक्सपोज है कि अब वो किसी नए रोल, आज लेट्स से आई एम अ फनी क्रिएटर और लेट्स से मेरा एग्जांपल है तो मैं पॉडकास्टर हूँ और मैं बहुत सीरियस क्रिएटर हूँ, अगर तो कल मैं अगर कॉमेडी बनाऊँ लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि तो मैं इसके लिए जानता हूँ क्योंकि अब आई एम ओवर एक्सपोज. डू यू थिंक ऐसा होता है
यार? ये ना एक तो इन्फ्लुएंसर होना और कॉन्टेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड होना, आई इट कैन बी माई पर्सनल ओपिनियन, डजंट हैव टू बी यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बहुत अलग होता है एक मूवी स्टार होने से. अब आप स्टार और एक्टर में भी फर्क होता है, हमें पता है. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप पिक्चर के अंदर एक्टर हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक स्टार जो बनता है इंसान, वो एक यूनिकनेस, एक जो चीज़ होती है ना कि मैं इसको क्यों पैसे दे के जाके देखूं, इसके लिए क्यों वेट करूं. स्टार कौन होता है जिसकी तुम वेट कर करते हो कि ये कब नेक्स्ट काम करेगा, जो भी ये काम करेगा करेगी, मैं तुम मेरे को देखना है. और उसकी पर्सनैलिटी है बियॉन्ड, उसकी पर्सनैलिटी जो बियॉन्ड फिल्म है वो भी मेरे को इंट्रीग करती है क्योंकि वो मुझे सारी इतनी, मुझे इतनी आसान नहीं लगती कि अरे ये तो आसानी से हो गया. मतलब मुझे एस्पिरेशनल लगती है उसकी पर्सनैलिटी बियॉन्ड फिल्म ऑल्सो. तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये स्टार के अंदर होती हैं जो हर एक्टर में नहीं होती है. तो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो एंड यू आर वेरी गुड एट, मेरे को तो लगता है कि ये जो टैलेंट है कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ खुद कर लेना, डायरेक्ट एडिट सब कुछ, एक्टिंग वैक्टिंग सब खुद कर लेना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो हर एक को नहीं मिलता. मेरे पास नहीं है, मेरे को एक काम करना आता है, मैं वही कर सकती हूँ. मुझे इस भेड़ चाल में पढ़ना ही नहीं है कि रीले डालो. मुझे याद है डब स्मैश आया था, दो लोगों ने डाले, मैंने कहा मेरे पास, मेरे को लग रहा है मैं ऑडिशन दे रही हूँ सोशल मीडिया पे, मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, मेरे तो मेरा बैंडविड्थ नहीं है समझने का. तो मैं तो वही हथियार डाल दिया, मैं तो इस जोन में आऊंगी नहीं, रीले बनाने के जोन में. तो ये जो करते हैं ना उनका अलग लेवल का टैलेंट है, जो बहुत गुड, बहुत अच्छी है उस टैलेंट में. नाउ डोंट थिंक और डोंट डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू बिकम अ स्टार.
But a lot of people do that only.
So then you should understand.
Star और actor बनना होता है, इसीलिए वो ये करते हैं.
Again, I said this is a difference between an actor and star. किसी को star ही
बनना होता है.
So एक बात, अगर आप अपने आपको audience बना के सोचो, जिसको मैं free में swipe करके रोज देख रही हूँ,
अलग अलग तरीके से नाचते हुए,
अलग अलग getups में, अलग अलग personalities में देख रही हूँ मैं free at the swipe of my finger, मैं ऐसे इंसान को सोचूंगी कि अच्छा इसने picture करी है पूरी, तो कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया पर देख ही रही हूँ. अगर मुझे अनलेस एंड आई फील कंटेंट ऐसा है जिससे मुझे हिला दिया, मतलब इतना पाथ ब्रेकिंग कुछ हो गया, तो मैं जाके देख लूंगी. बट अदरवाइज जस्ट बिकॉज कि वो फीचर कर रहा है या कर रही है इन अ फिल्म एज अ स्टार, माइट नॉट अट्रैक्ट मी दैट मच बिकॉज वो इतना कन्वीनियंट हो गया है.
एंड मेरे लिए ज्यादा बड़ा फैक्टर ये है कि जैसे टुडे आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि ओके आप कहाँ खाते हो, कहाँ जाते हो, आप किसको डेट कर रहे हो, आप कैसी मूवीज करोगे, आपने कौन सा क्लब खरीदा, स्पोर्ट्स, लाइक आई एम सो मच इंटरेस्टेड बिकॉज़ आई डोंट नो मच अबाउट यू, सो देयर इज लॉट ऑफ इंट्रीग टू नो यू. पर विद अ क्रिएटर मुझे सब पता है क्योंकि उसने जब वो साइन कर रहा था, सोच रहा था, तब भी मुझे ब्लॉक करके दिखा दिया.
तो वो चीज
मुझे और कुछ जानना ही नहीं है नेक्स्ट.
वही ना, हमारे को ओवरडोज हो चुकी है कंटेंट की किसी से, तो हमारे को पता है. तो देन वो रिलेटेबिलिटी क्वेश्चन को उन्होंने इतना हाई कर दिया है कि वो जो मिस्ट्री चाहिए होती है फॉर द स्टारडम गोज टोटली मिसिंग. सो दैट इज द डिफरेंस.
यू सेड बीच में एकदम स्टार्टिंग व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट जोनी, यू सेड कि मैं खुद को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ. तो ये डू यू थिंक इट कम्स बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन, और इज इट बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग और बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स? बिकॉज ना अभी रिसेंटली मैंने अगेन एक रील देखी थी विच इज़ वेरी स्पॉट ऑन. उसमें पता नहीं किसने बोला था, आई डोंट रिमेंबर, दैट यंग पीपल आर वरीड अबाउट द रेपुटेशन विच दे डोंट हैव.
यार ये तो हमारे से ओल्डर, मेरे पेरेंट जनरेशन की भी प्रॉब्लम है. क्योंकि मेरी फैमिली को उनका नाम, जो लोग क्या कहेंगे, एल्डर जनरेशन, उनको यही पर लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे ने ये कोर्स नहीं किया, वो क्या, लोग, ये भी तो इतना का रेपुटेशन सेविंग ही हो गया ना,
बहुत ज्यादा.
तो ये तो मेरा तो मेरे फादर स्पेशली आज तक इसी फंडे पे जिंदा है. अरे कुछ भी हम करें लोग क्या कहेंगे, तुमने, लोग क्या कहेंगे. आई थिंक उन्होंने अपनी, वो भूल ही गए हैं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने यही सोच के जी है कि लोग क्या कहेंगे, एंड उन्होंने हम सबसे भी यही एक्सपेक्ट किया. तो मैं थोड़ी बागी निकल गई. अभी बाकी सारे घर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कभी संभालना पड़ता है कि अरे भाई नहीं पड़ा फर्क
कमाएंगे, दीदी की साइड कभी पापा की साइड.
हाँ, तो एटलीस्ट
यू आर द एल्डर वन.
आई एम द एल्डर वन. हाँ, तो थैंकफुली फॉर माई सिबलिंग एंड द कजन्स ऑल्सो, कि एटलीस्ट एक बागी निकल जाता ना तो फिर बाकियों के लिए थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है. तो एटलीस्ट वो हो गया कि चलो इसने लड़ाई कर ली, झगड़े इतने कर लिए, हमारे लिए इतनी नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं होगा. बट अभी तक मेरे फादर तो हालांकि मेरे को देख रहे हैं वो, और मुझे करने देते हैं, अब उन्होंने गिवअप कर दिया मेरे पे, तो वो अब वो करने देते हैं मुझे जो करना होता है. बट वो अभी भी यही सोच के उनकी डिसीजन मेकिंग होती है कि लोग क्या कहेंगे.
ऐसे कभी कोई डिसीजन है जो पापा ने बोला और यू डिसएग्रीड?
पापा ने सोचा कि पूछो कि पापा ने क्या बोला ना, एग्रीड वो कम होंगे. But eventually, you see, this one common thing is that me and my father agree to disagree. So that...
Really? How do you form this relationship with father?
When...
यार ये तो बहुत difficult
था. ये बहुत difficult था.
बहुत difficult.
बहुत sleepless nights, arguments, and you know, like standoffs of different kinds. But मैं कभी घर छोड़ के नहीं गई हूँ. वो वाला extremity नहीं आया. But I think... मेरा जो हेडस्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई फादर. आई फील घर में तो एटलीस्ट सारे ही बोलते हैं. तो आई थिंक ये इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि है तो मेरा ही डीएनए, तो इतनी आसानी से तो मान नहीं जाएगी चीज़ें. आई थिंक ही आई अर्नड माई रिस्पेक्ट इन माई डैड्स आईज. आई टेल यू हाउ, कि मैंने अपने जो डिसीजंस लिए ना, आई फॉलोड इट एंड आई शोड हिम रिजल्ट्स. सब चीज़ों में नहीं होंगे, 5 में से 2-3 में भी हो गए तो इट गेव मी सम रिस्पेक्ट. मैंने अगर डिसाइड किया मैं ये सब्जेक्ट लूँगी या मैं ये को करिकुलर एक्टिविटी करूँगी, उसमें आई शोड हिम अ रिजल्ट दैट ही वॉज लाइक ओके शी इज़ गुड एट इट. मैंने उनके साथ बार्टर की कि एक काम करते हैं, मैं आपको नंबर ला के दूंगी, आप रिटर्न में मुझे कभी रोकोगे नहीं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ, तू वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट क्यों कर रही है, स्कूल के बियॉन्ड तू इन क्लासेस पे क्यों जा रही है, आप मुझे उसके लिए नहीं रोकोगे. तो मैंने उनके साथ ये बार्टर डील करी थी. तो दैट काइंड ऑफ आई थिंक माई, इट्स नॉट लाइक मैंने पापा ने कभी बैठ के इस बारे में डिस्कशन करी है कि कैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं अंडर द सेम रूफ इवन नाउ, बट आई फील इट्स माई इंटरप्रिटेशन कि ऐसा हुआ होगा कि आई अर्न माई रिस्पेक्ट ओवर ईयर्स, कि जो भी मैंने डिसीजन लिया आई स्टक बाय इट एंड आई काइंड ऑफ लाइक प्रूव्ड समथिंग इन दैट. दैट उन्होंने कभी फिर मुड़ के मुझसे नहीं पूछा कि अच्छा बताओ एमबीए कब करनी है अब. वरना वो वाली कंडीशन पे मैं निकली थी काम करने कि एक साल ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो आके एमबीए करूंगी. तो द फैक्ट दैट माय फादर आफ्टर 13 years, इन 13 years हैज नेवर आस्क एमबीए कब करनी है, मींस कि आई अर्नड माय रिस्पेक्ट. आई थिंक दैट्स व्हाई वी कोएग्जिस्ट
इज देयर, यू नो, मी एंड माय फादर सेम. आई थिंक मैंने भी मेरे आई थिंक अगेन
बिकॉज यू नेवर हैड दिस कन्वर्सेशन ना बैठ के,
आई थिंक कि मैंने मेरे पापा की रिस्पेक्ट जीती है, नाउ ही रिस्पेक्ट मी फॉर व्हाट आई डू. पर पता है अभी भी आई नो कि उन्हें ना अभी भी बड़ा फील करना है.
हाँ, ऑब्वियसली
ही स्टिल वांट्स टू. सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स कि जहाँ पे हम दोनों डिसएग्री करते हैं, हम लड़ते हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल गलत है पापा, और मुझे ये डिसएग्री करना है और यहाँ पे लड़ाई होगी. तो मैं सिचुएशन को ट्राई करता हूँ कि एकदम स्टेबलाइज कर दूं, और फिर मैं उधर से मूव ऑन कर दूं और उनको फील कराऊं हाँ आप ही बड़े हो. फिर थोड़े दिन बाद मैं धीरे से कोई दूसरे एंगल में उसको कॉन्वर्सेशन लाने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं इनको पर्सपेक्टिव दूं और समझाऊं. क्योंकि आई नो जिस दिन मैं ऐसा करने लग जाऊं, उनको ये बता दिया कि मैं अब आपसे बड़ा हो गया हूँ, आई थिंक वो टूट जाएंगे. सो इसलिए आई जस्ट फील लाइक कि आई जस्ट कम टू दिस रियलाइजेशन कि पापा जो बोल रहे हैं ठीक है यार, मतलब अग्री कर लो बाद में हटा दो.
दिस इज द ओनली स्पेस, एटलीस्ट आई थिंक इफ वी बोथ आर लियोज एंड वी माइट अग्री ऑन दिस, कि एक ही जगह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट झुकती है, वो है मेरे माँ बाप के आगे.
ट्रू.
और कहीं कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगाऊंगी किसी के लिए.
1000% अग्रीड.
हाँ, तो ये वहीं झुकती है और वहीं सिर्फ वहीं ही झुकेगी और कहीं नहीं झुकेगी. इवन दो आई नो कि काफ़ी चीज़ों में वो गलत हैं, इवन दो टिल डेट अगर मुझे कोई नई चीज़ उनको बतानी होती है जो मुझे लग रहा है कि शायद ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं रिहर्स करती हूँ अपने दिमाग में लाइंस कि पहले ये लाइन बोलूंगी, उसके बाद ये लाइन बोलूंगी, और उसके बाद ये बोलूंगी, फिर ये आगे उनको बोलूंगी अब ठीक है ना. तो मैं स्पीच प्रिपेयर करती हूँ अपने दिमाग में, रिहर्स करती हूँ अपने दिमाग में कि ये इस तरीके से प्रेजेंट करना है पापा को ये टॉपिक. आज तक
I should also do that now.
Yeah, I'm telling you, it kind of works. Because वो थोड़ा सा strategic manipulation भी हो सकता है कि तुम्हें पता है कि उनका attention किस line से लेना है और वो किस तरीके से इसमें प्लस और माइनस देखेंगे, तो उनको प्लस कैसे हाईलाइट करवाने हैं और माइनस का उनको बताना है कि कैसे डील कर लेंगे हम इससे. तो आई हैव टू स्ट्रेटेजाइज दैट होल कॉन्वर्जेशन, बट दैट्स द ओनली पर्सन आई विल डू इट फॉर. बाकी लोगों के साथ होगा इट्स माय वे और हाई वे मोर ऑर लेस, कि मैं कोई करना है देख लो, ये मेरे को पसंद है, आपको नहीं पसंद तो ठीक है नहीं करते, आप कोई काम नहीं करते साथ में, कुछ और कर लेंगे. बट पापा के साथ नहीं कर सकते ना कि आपको नहीं पसंद तो आप मेरे पापा नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती भाई. अब तो आप तो रहोगे ही जो रहोगे. तो अगर पापा बोल रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी है, आप बोलो, आप कहीं पर भी साइन करा लो मुझसे, बट रिटर्न में ना अब आप मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ खर्च करना है.
सो डील गाइस, How to influence your parents one-on-one by
बस पापा ना सुने मेरे ये podcast, बाकी सब ठीक है.
पापा देखो मैंने तो बोला है ये कि मैं अभी भी चाहता हूँ आप ही बड़े रहो, मैं आपकी अग्री करूंगा. इस कौन मैं नहीं इन्फ्लुएंस करता हूँ, अभी तक नहीं किया. बट वर यू ऑलवेज दिस कॉन्फिडेंट?
या आई थिंक सो. पहले शायद थोड़ा सा शैलो लेवल का कॉन्फिडेंस होता था, शैलो लेवल इन द सेंस कि मतलब वो थोड़ा सा दिल्ली वाला एटीट्यूड होता है ना, मतलब ये तो नहीं बोल सकती मैं तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वो वाला नहीं हो सकता क्योंकि मैं कोई एज ए साइड इतने बड़े खानदान की नहीं हूँ.
फिर तो, भी बोलते हैं दिल्ली वाले लोग तो फिर बोल देते हैं.
कोई वीआईपी भी नहीं है यार मेरी फैमिली में तो.
तो अब आप हो गए ना वीआईपी, अब बोलते हैं.
तो अभी भी स्ट्रेंजली अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक्चुअली हुआ था कुछ ऐसी सी चीज जिसमें मेरी बहन किसी से बात कर रही थी, आई थिंक घर में किसी से बात कर रही थी, पापा को या हमारे एल्डर चाचा चाची वगैरह सबसे बात कर रही होगी, तो सब समझा रही थी कि नहीं देखो हम ऐसे चीज़ें करेंगे वैसे नहीं करेंगे, यू डोंट नो हु वी आर. तो ऐसा मेरी बहन समझा रही थी, तो सडनली मैंने तो मुझे समझा रही देख पता नहीं ऐसे कैसे बोल रहे थे कि ये कर लो को लो, अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या हु वी आर. तो मैंने जब उनको देख के बोला हु आर वी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक्चुअली हम कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, एटलीस्ट वो मैंने अपने आप को बोल के रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे नहीं कोई बड़ी तोप लगती. तो मेरे आस पास वाले ज्यादा यूज करने लगे हैं यू डोंट नो हु वी आर, यू डोंट नो हु यू टॉकिंग टू, मेरे को हु आर वी टॉकिंग टू, हु इज इट.
बट ऐसे ही होता है, आपके अलावा आस पास वाले सारे
होते हैं. हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आई थिंक द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो पहले थोड़ा फ्रिवलस था. स्कूल कॉलेज के दौरान कॉन्फिडेंस जरूर था, मतलब
बड़ी कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब इज इट कि पेरेंटिंग बहुत स्ट्रांग हुई, इज इट कि आप खुद में कॉन्फिडेंट, इज इट कि आप हमेशा से ऐसे था कि मैं बहुत बढ़िया दिखती हूँ मैं?
नहीं यार, दिखती वाला तो मुझे डाउट मुझे नहीं लगता था क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि लड़के मेरे पीछे गिर रहे हैं.
क्या बात कर,
नहीं था यार एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा, मेरे स्कूल वाले अगर मुझे अभी देखते हैं वो आई थिंक अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर पाए हैं कि ये हो गया, मतलब वो विजुअल ही मैच नहीं कर
तो
रहा है.
आपके क्रश ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी?
नहीं नहीं, क्रश ने नहीं, जिसने जिसके साथ मैंने लाइफ में पहली बार डेट किया था 9th-10th क्लास के अंदर, उसने मुझे छोड़ दिया था एब्रप्टली ये कह के कि मुझे 10th क्लास की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना
भाई
है.
तो देख रहा है.
हाँ मतलब तो चलो फैमिली पूरी सेटल्ड है उसके साथ में, फैमिली के साथ है वो पूरी, बट मेरे कॉलेज एंड ऑल यू गेट टू नो बिकॉज यू हैव कॉमन पीपल. एंड देन मुझे याद है वो मेरा इतना बड़ा हार्ट ब्रेक था, मैं पीसीओ पे 2 रुपए के सिक्के डाल के जाके रो रो के उसको कॉल किया मैंने, और वो मेरा फोन नहीं उठाता था, और उठाता था तो बड़ा कोल्ड रिप्लाई होता था कि नहीं हम नहीं, वी कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एंड ऑल. उस टाइम पे पीसीओ लैंडलाइन का ज्यादा ही था, तो वो मैं 2-2 रुपए के सिक्के मैंने डाल के पीसीओ के बूथ में इतना रोई हूं मैं. तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कोई मेरी ऐसी हालत कर सके. तो वो 10th क्लास के बाद मेरा इतना बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ उसके बाद.
10th क्लास के बाद कभी हार्ट ब्रेक ही नहीं हुआ?
ऐसा मेजर नहीं हुआ, थोड़े बहुत तो होते ही हैं.
इज इट डिफिकल्ट टू डेट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर? डिफिकल्ट होता है टू डेट?
मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम विद द सेम पर्सन सिंस पास्ट 10 इयर्स. And I think, sweet. I think I started acting 13 years back. So I did meet him the year I was debuting in Bollywood. I met him and I've been with the same person since then. And I have no thoughts of leaving him or being with anyone else because I think I'm way too happy in the relationship. तो ये मुझे लगता है मेरे आसपास के लोगों से मुझे सुनने में आता है, it is very difficult to find someone after you become an actor because your sense of कि ये क्यों इस इंसान को मेरे में इंटरेस्ट क्यों है या व्हाट व्हाई एग्जैक्टली आई लाइक दिस पर्सन, बिकम लिटिल स्क्यूड. मतलब वो आपको उसका 100% ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जेन्युइननेस पे आप डाउट करते रहते हो. तो वो मैंने अपने आसपास के को एक्टर्स को ये बात डिस्कस करते हुए या मेरे से ही बात करते हुए कि यार नहीं मिलता है कोई, ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है.
एंड डू यू फॉल लाइक बिकॉज आप हर थोड़े दिन में एक नए सेट पे किसी नए इंसान के साथ हो और तीन दो तीन महीने आप उसी के साथ उधर बंद हो एंड देन मोस्ट कॉन्वर्सेशन आपकी उसी पार्टनर के साथ होती है एंड वो सामने वाला भी अकॉम्प्लिश्ड है, सक्सेसफुल है, गुड है, लाइक यू नो एवरीथिंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट इंटीमेसी. सो इज इट लाइक कि नए नए लोगों के साथ यू कीप फॉलिंग इन, कीप डेवलपिंग फीलिंग्स और सो डिफिकल्ट टू जस्ट रिपेल क्योंकि तुम एक आर्टिफिशियली वो क्रिएट कर रहे हो जो तुम्हारे दिमाग में कि मैं रियल के साथ ऐसा होऊंगा या होंगी.
या मेरा, मैं बताती हूँ कैसा मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन क्या मेरा है इसके अंदर. आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ खाली है या आपके फीलिंग्स में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है या कोई खाना खाली रह गया है आपकी लाइफ का, अगर वो खाली है तो आपको कहीं भरता हुआ दिख रहा है तो आप अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ. अगर वो खाली है ही नहीं, इफ़ यू आर टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव ऑलरेडी, तो वो एवेन्यू खाली ही नहीं है कि वो कोई और आके भरेगा. तो इसलिए वो फीलिंग जो है वो इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इवन इन अ रिलेशनशिप जो आपको लगता है बहुत खुश है, बहुत ठीक है, हो सकता है आपका ऐसा कुछ खाना था जो खाली रह गया जो आपको आप नहीं देखना चाह रहे हो, बट वेन यू मीट समवन एल्स एंड यू फील लाइक अरे यार ये इसने तो
वो मेरा मिसिंग पार्ट,
वो मिसिंग पार्ट ये फिल कर रहा है जो मुझे लग रहा था कि अभी तक है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. बट मेरे को ये पता है कि मेरे केस में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ आज तक. और कभी भी ना थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन आधा बैगेज पता क्या होता है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर, हाउ इज दैट पार्टनर टेकिंग अदर रिलेशनशिप्स ऑफ योर लाइफ. ज़्यादातर इनसिक्योरिटी भी होती है, डैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि आपकी लाइफ के अंदर आपको आप अलाउड ही नहीं होते बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डेज यू फील यू हैव विद योर पार्टनर कि तुम बाहर किसी से नॉर्मल चिल भी नहीं कर सकते किसी के साथ. वो ऐसे भी बहुत लोगों के इश्यूज होते हैं
जो दैट गेट्स वेरी टॉक्सिक.
या दैट्स वेरी टॉक्सिक एंड दैट्स वेरी मच देयर. आई हैव सीन इट अराउंड मी वेयर पीपल फील लाइक दिस थिंग कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये के साथ हूँ. बट दैट मीन्स दैट्स नॉट अ वेरी, दैट्स आई डोंट फाइंड दैट अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. अगर आपको सिर्फ वैलिडेशन और सेटिस्फैक्शन इसी तरीके से देनी है कि आप औरों के साथ चिल नहीं कर सकते, आई बिलीव यू हैव कम टू अ गुड रिलेशनशिप व्हेन यू डोंट फील द बैगेज ऑफ दैट रिलेशनशिप. तो जब आपको अगर कोई बैगेज लग रहा है कि आपको चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं जो आप करना नहीं चाहते बट करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको एक इंसान के पास वापस जाना है, तो मतलब दैट्स नॉट रियली हेल्पिंग यू. दैट बैगेज इज गोइंग टू समडे गेट यू डाउन, इज नॉट गोना लेट यू फ्लाई. सो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट रिलेशनशिप टू बी इन. आई कीप सेइंग दिस अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट यू हैव टू बी अ मैन. आई ऑलवेज न्यू समवन हैज टू बी अ मैन इनफ टू बी विद मी. यू कांट बी अ बॉय. दैट्स अ डिफरेंस. So,
what are the differences? Please tell me, boy versus man. Every girl, every accomplished and successful woman I meet talks about this. I want to know the difference. All the boys who are watching, they want to know. Please, yeah, the nation wants to know.
As a बहुत बड़ा reveal होने वाला है कि सारे के सारे आदमी मेरे पीछे जूते लेके पड़ जाएंगे, लग रहा है मुझे.
नहीं, बट अरे जानना है यार, हमें पता ही नहीं है.
यार एक तो sense of security होती है जो एक आदमी को होती है, एक लड़के को इतनी नहीं होती क्योंकि लड़का अभी भी ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज लाइफ. नथिंग अगेंस्ट दिस, अ सर्टेन एज ग्रुप और एक्सपीरियंस और यू नो द बैकग्राउंड दैट मेक्स यू सिक्योर एंड इनसिक्योर, दैट कैन बी बेसिस एज एक्सपीरियंस वट एवर. तो वो एक आदमी में होता है कि मतलब मुझे पता है मैं कौन हूँ, बहुत ही सिक्योर है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको चुना है. मुझे ना तेरे को लेके इनसिक्योरिटी है, ना मुझे अपनी पोजीशनिंग को लेके इनसिक्योरिटी है. वो एक आदमी में होती है, एक लड़के में नहीं होती है. एंड लड़का ही विद एक्सपीरियंस एंड एज जाके आदमी बनता है. हो सकता है कुछ कभी आदमी ना बन पाए, सिर्फ लड़के ही रह जाए, ऐसा भी होता है. ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं. बट यूजली विद एज एंड एक्सपीरियंस यू गेट देयर. अब मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई वॉज दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यू हैड टू बी एन एक्सट्रीमली सिक्योर पर्सन क्योंकि वो तुम इंटिमिडेट नहीं हो सकते मेरे आसपास की, अगर तुम इंटीमिडेट हो गए तो फिर तो वो, फिर वो चल ही नहीं सकता, वो रिलेशनशिप भी नहीं चल सकता, वो फ्रेंडशिप भी नहीं चल सकती अगर तुम इंटीमिडेट हो गए आसपास। तो वो चीज़ जो है वो आपको आदमी और एक लड़का, मैन और बॉय में डिफ्रेंशिएट करती है। आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबसे बड़ी ये चीज़ होती है, एंड एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट। योर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ योर टॉक्सिसिटी कोशंट कम्स अंडर दैट, योर जेंडर पॉलिटिक्स कम्स अंडर दैट। All these things are the subsets of that sense of security and insecure. I'm not saying आपको आदमी वो होता है जो successful होता है, जिसने life में इतना bank balance और इतना कर लिया है, और लड़का जो होता है, वो वाले हिसाब से मैं नहीं तोल रही हूँ। वो आप चाहे, हो सकता है आप अमीर ना हो बिल्कुल भी, आप successful किसी number one ना हो अपने profession के अंदर, but आप still बहुत confident and बहुत secure हो अपनी life में, कि जहाँ हो आप अपने बलबूते पे हो, जैसे हो आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप से। वो जो चीज़ है ना, वो बहुत डिफरेंशिएट करती है एक आदमी और एक, तो ये इज द बिगेस्ट डिफरेंस, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन।
रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या है?
अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे को अपनी लाइफ का हर कदम किसी से पूछ के लेना पड़ेगा, तुम अपना डिसीजन खुद तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे लाइफ का, कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए प्रोफेशनली या पर्सनली, हर चीज़ तुम्हें उस रिलेशनशिप से पूछ के करनी पड़ रही है,
बहुत डिपेंडेंट हो।
हाँ, तो वो दैट मीन्स तुम मतलब उसको मद्देनजर रख के कर सकते हो कि क्या तुम्हारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, तो यू वुड वांट टू अवॉइड दैट। बट अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारा करने का बहुत मन है, बट तुम्हें लग रहा है कि उसको पसंद नहीं आएगा, पूछना पड़ रहा है, चाहे तुम पूछना नहीं चाहते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो, जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हें कभी भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि एक कभी कभी गुड एंड बैड डेज होते हैं प्यार के। प्यार सिर्फ सारे दिन 24 आवर्स पूरे साल नहीं रहता है, किसी दिन रहता है किसी दिन नहीं रहता है, पर जो रहती है चीज़ वो होती है रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस दिन प्यार नहीं होगा ना, उस दिन रिस्पेक्ट रहेगी, और वो तुम्हारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो जिसकी नींव रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप की, वो ही ग्रीन फ्लैग होता है। अगर तुम्हारे को कभी भी डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है रिलेशनशिप में, डजंट हैव टू बी कि थप्पड़ मारो ऑलवेज, इट कैन बी बियॉन्ड दैट ऑल्सो, इट कैन बी वर्बल ऑल्सो, इट कैन बी चीटिंग ऑल्सो, इट कैन बी एनी थिंग, वेन यू फेल डिसरिस्पेक्टेड, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग।
वन सेम क्वेश्चन एक्सटेंडेड वन वन, बिकॉज आई वांट टू सेग्रीगेट दिस। Give me one red flag in a girl, because you're a woman and you would know that. And give me a red flag in a boy or a man.
मेरे ज़्यादातर flags जो होंगे वो थोड़े से gender neutral type के होते हैं। तो लड़कियों के अंदर the girl who is constantly checking your phone, मतलब I'm just talking about activity basis पे, micro level not macro, जो बाबर तुम्हारा, जिसको तुम्हारे सारे passwords पता होने चाहिए, तुम्हारे एक्सेस होना चाहिए तुम्हारे, मीन्स दैट्स, या तो तुमने उसको ऐसा कुछ फील कराया है कि ऐसा हो, या फिर दैट्स अ वेरी मेजर रेड फ्लैग, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये जो होती है ना स्पाइंग वर्क, वो ज़्यादा देर तक रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो मुझे लगता है। और क्या एक लड़की का हो गया और एक लड़के का, जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, तुम इससे बात करो उससे मत करो, प्रोफेशनली तुम ये करो वो मत करो, तुम ये पहनो वो मत पहनो, ये काम करो वो मत करो,
कंट्रोलिंग बिहेवियर।
हाँ हाँ, कि मतलब मैं तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस मैं बनाता हूँ, उसका चाहे छोटा हाथ हो या बड़ा हाथ हो, बट उसका हाथ है तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस लेने में। So I think it's a little red flag.
That's so spot on. I believe in this. I'll tell you. Tell me if you agree or disagree, right? I genuinely believe that powerful man or powerful men don't control. Powerless men control.
So that's a sense of security and insecurity. Exactly. That's a man versus a boy. Because wo usko pata hai ke sense of security, main bahut comfortable hu is relationship mein, regardless of whatever this person is doing in her professional life. Or I know, I'm sure ki ye ladki jo hai ye mere sath honest rahegi, ye tumhari security bhi darshata hai. Agar tum usse to itna doubt hai tumhe uske upar, to ye relationship hai hi nahi, tum aage badhani hi nahi chahiye ye. So that's the difference.
So because, you know, a lot of people specifically when they look at different characters in movies and aaspaas bhi dekhte hain, lagta hai ki main macho, main ladka hoon, main ऐसे कैसे मेरी बंदी यहाँ जा सकती है, मेरी बंदी ये कर सकती है. आई थिंक दैट्स अ साइन ऑफ अ पावरलेस मैन. वो खुद में पावरलेस फील करता है, उसे खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी तरह अपना पावर कंट्रोल के थ्रू एक्सर्ट करना चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं. जो पावरफुल और सिक्योर होता है ना, वो नहीं करेगा
क्योंकि उसको ऐसी छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है पावरफुल फील होने के लिए, वो अपने आप में ही पावरफुल फील करता है.
एग्जैक्टली. ओके, कमिंग टू योर स्क्रिप्ट्स एंड मूवीज, दैट्स I want to talk about this. मैंने ना कहीं ये सुना आप like you go out of your way to get scripts, the right script you want to work on. Is it?
क्योंकि कोई और नहीं करेगा ना मेरे लिए.
Like you go out of the way, like you always been known for this कि you want this to you want this, आप rights लेके आओगे, कुछ chase करोगे. क्या है? Like give me an example or a scenario कि क्यों ऐसे लोग बोलते हैं.
क्योंकि example देके बताती हूँ. सांड की आंख एक फिल्म थी, मेरे लिए मेरे एज ग्रुप के लिए नहीं बनी थी, बट मुझे ऐसी फिल्म करने का मन था जो दो लड़कियां साथ में करें. एंड दो लड़कियां मतलब टू लीडिंग लेडीज, नॉट लाइक वन मेन एंड वन सपोर्टिंग. क्योंकि ये माना जाता था कि अरे दो लड़कियां साथ में मेन स्ट्रीम सिनेमा टाइप में हम नहीं, इट्स ऑलवेज इनसिक्योरिटी हो जाती है, ये हो जाता है. मुझे मतलब एक्टिंग करने का शौक है और मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी और एक्टर को लेके कि वो मेरा स्क्रीन स्पेस खा जाएगी या खा जाएगा. मैं बहुत सिक्योर हूँ एज एन एक्टर. तो मैं चाहती थी कि इस तरह की कोई मैं स्क्रिप्ट करूँ जिसके अंदर हम दोनों इक्वल हों और साथ में शोल्डर करें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म की. तो इसलिए आई वेंट आउट ऑफ माई वे टू हंट फॉर सच अ स्क्रिप्ट. एंड तब मुझे पता चला कि तुषार के पास एक स्क्रिप्ट है जो दो औरतों की है. मुझे नहीं पता था तो दो बुढ़ी औरतें हैं. तो मुझे पता चला था कि दो औरतों की कहानी है. तो मैं गई उससे मिलने के लिए और उसने मुझे मिलते ही कहा बट मेरी कहानी तो दो बुढ़ी औरतों के बारे में है. तो मैंने कहा कि अच्छा, बट देन यू टेल मी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, कि अगर तुम्हें लगता है कि हम प्रोस्थेटिक्स से कर सकते हैं, आई स्टिल वुड वॉन्ट टू डू इट. क्योंकि मैं एक दो जगह गई थी पहले, मैंने स्क्रिप्ट कुछ पढ़ी, मुझे मज़ा नहीं आया जो मुझे स्क्रिप्ट मिली. हंट करके ही मिली कि मुझे चाहिए, दो किसी के पास है तो बताओ, मैं बात करना चाहूँगी टाइप. इसने एक दिन लिया और उसने तुषार, उसका इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग था कि आई थिंक मैं ये करना चाहूँगा. सो इस तरह से मैं पिक्चरें, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है कोई, तो मुझे ही एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि मेरे करियर में कोई मेरा गॉडफादर नहीं है जो ये करेगा. मतलब कोई फ़ोन उठा के किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि इसको इस फिल्म में ले लो, ये बहुत मेहनती एक्टर है या बहुत अच्छी एक्टर है. ये काफ़ी होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, बट मेरे साथ कोई नहीं करता, तो मैं ही करती हूँ ये. चाहे वो स्क्रिप्ट लेके जाना हो, चाहे आगे से मैसेज करना हो कि प्लीज़ आई नो यू वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट एंड ये वाली फिल्म मैं चाहती हूँ कि मतलब आपके साथ काम करूँ, तो प्लीज़ इफ़ यू फील दैट आई एम फिट फॉर इट दिस रोल, प्लीज़ टेक मी. मैंने ऐसे आगे से मैसेजेस करे हैं, चाहे वो 8-9 साल पहले हो, चाहे वो आज क्यों ना हो. आज भी मैं खुद ही फ़ोन उठा के खुद ही मैसेज करती हूँ लोगों को कि मेरे को आपके साथ काम करना है, आप अगर किसी फिल्म में काम करो या मुझे पता है आप इस फिल्म में काम करो, क्या मैं कर सकती हूँ. मैं आगे से करती हूँ, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है.
कोई ईगो ईगो नहीं कि मेरे लिए राउट करे कोई,
बट है ही नहीं ना कोई, तो मैं किसकी वेट करूँ. तो मैं वो हाई हॉर्स पे बैठ नहीं सकती कि भाई मैंने जैसे बोला 100% टैलेंट पे काम नहीं करती इंडस्ट्री. राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड द राइट अप्रोच ऑल्सो हेल्प्स. So,
talent के अलावा क्या क्या चाहिए होता है in order to grow,
अच्छी किस्मत
उसके अलावा और
वही होता है भाई, लक और अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो एक्सेस पॉइंट बहुत क्रिटिकल है. देखो कोई भी रोल ऐसा नहीं होता जिसको सिर्फ यही इंसान कर सकता है, उसके अलावा तो कोई और कर ही नहीं पाएगा. लेट्स बी रियल एंड प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं होता है. सो अगर आप सही समय पे सही जगह पे हो तो हो सकता है आपको मिल जाए, या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा गॉडफादर है जो फोन उठा के आप लोगों को बोल सकता है कि आप इसको ले लो, तो आपको मिल सकता है. या फिर आप खुद ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लो ऐसी कि आपको वो स्क्रिप्ट आप ही ढूंढ के लेकर आओ, आप ही पैकेज करो. ऐसे हो सकता है, यही तरीके हैं वो करने के, और कोई तरीका नहीं है.
और यहाँ तो फैमिली बैकग्राउंड हो तो
वही एक्सेस पॉइंट हो गया ना. कोई फोन करके करता है आपको, वो बोलता है अच्छा मेरी बेटी है या मेरा मेरी बहन है या फिर मेरे जान पहचान की है या मेरी फ्रेंड की बेटी है, आप इसको ले लो. वो होता है इंडस्ट्री में, आज तक होता है.
बट इज इट उनका सक्सेस रेट, लाइक सक्सेस रेट ज्यादा होता है कि ऐसा कुछ होता है?
सी देखो सक्सेस
लाइक लेट्स जस्ट नेपोटिज्म और व्हाटएवर द वर्ड इज कि जो मेरे घर वाले हैं मैं उनको ही सपोर्ट करूँ, हर इंडस्ट्री में
इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड
फेवरेटिज्म. ये बिजनेस में भी होता है कि बिजनेसमैन का बेटा या बेटी वही चेयरमैन बनेगी कोई भी रियल कोई भी डिजर्विंग हो या ना हो वो बनता रहता है राइट और ये हर इंडस्ट्री में चलता रहता है राइट क्योंकि घर में कॉन्वर्जेशन होती है एक्सेस वो होता है सब चीजें मल्टीपल रीजन बट दिस इज वेरी लाइक ऑडियंस फेसिंग तो ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा तो ऑडियंस तुम्हें भगा देगी बट डू यू स्टिल फील किसी तरह से बिकॉज यू आर फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड तुम्हारी इमेज और तुम्हारा टैलेंट या तुम्हारी मूवीज इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा तुम्हें कि नहीं भी अच्छा लगेंगे लोग को तो किसी ना किसी तरह तुम्हारी आदत लगा दी जाएगी और तुम चल जाओगे
देखो ये होता है देखो सक्सेस इन आर इंडस्ट्री ना इज अ लॉट परसेप्शन बेस्ड इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक नंबर इट्स वेरी परसेप्शन बेस्ड एक तो हमारी ऑडियंस को जो आजकल चस्का लग गया नंबर डिस्कस करने का ना उनको इतना भी नहीं समझ अभी तक कि एक पिक्चर बनती कितने में है और वो कलेक्ट कितना करती है उसका जो डिफरेंस है ना वो बताता है कितनी बड़ी हिट है फ्लॉप है पिक्चर जो बारहवीं फेल पिक्चर आई है ना जो विक्रांत की वो बहुत बड़ी सक्सेस है क्योंकि बनी कितने में है उसने कलेक्ट चाहे 50-60 ही किए हों बट वो इतनी बड़ी सक्सेस है क्योंकि जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ह्यूज है वर्सेस बिगेस्ट ऑफ बिग फिल्म्स दैट हैव मेड मनी दिस ईयर सो वो जो डिफरेंस है एक तो वो समझने की जरूरत है जस्ट बिकॉज पिक्चर ने 100 करोड़ क्रॉस कर लिए तो ही हिट है 50 करे या 25 करे तो हिट नहीं है ऐसा नहीं होता है
दूसरा कितने बन रहे हैं
हाँ प्रॉफिट समझ में आता है ना सबको सब को दुकान वगैरह भी तो चलाते हैं ना लोग अपने प्रोफेशन के अंदर अपना कुछ तो काम करते होंगे उनको समझ में आता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है तो ये प्रॉफिट होता है पहले तो ये बात को समझें और दूसरी ये चीज समझें कि कलेक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्क्रीन काउंट्स
ओके
स्क्रीन काउंट इज कितनी स्क्रीनिंग मिल रही है आपकी पिक्चर को
ओके
अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान में 5,500-6,000 थिएटर्स हैं एक हिंदी फिल्म के लिए अगर मान लीजिए तो उसके अंदर से आपकी फिल्म को कितने मिले हैं आपको मैं एग्जांपल देती हूँ अपनी फिल्मों से बोलूंगी दूसरों के नाम नहीं लूंगी बदला एक पिक्चर आई थी उसने कुछ 88-90 करोड़ कमाए थे उसको पता है कितने थिएटर मिले थे कितने स्क्रीन्स मिली थी 900 स्क्रीन हिंदुस्तान में अगर 5,500 या 6,000 स्क्रीन्स हैं उसमें से 900 स्क्रीन्स मिली थी
1/6 भी नहीं मिली
हाँ उसके अंदर उसने 88-90 करोड़ कमाए तो वो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ फिल्म्स दैट क्रॉस 100 करोड़ आल्सो विद दैट लिमिटेड स्क्रीन काउंट बिकॉज इट वॉज अ जॉनर उस तरह का जॉनर था जो मास जॉनर नहीं है तो उसको 1500 स्क्रीन्स नहीं मिल सकते तो इस तरह से तुम्हें स्क्रीन काउंट समझना पड़ेगा कि इतनी ये फिल्म इतनी ही जगह रिलीज हुई है तो उसकी क्षमता ही नहीं है इतने कमाने की कि तुम उसको कंपेयर करो 100 करोड़ वाली फिल्मों से क्योंकि नहीं देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीन उसको एंड ऑब्वियसली राइटफुली सो क्योंकि उसकी ऑडियंस कम है तो तुम उसको तभी कहते हैं ना ऑरेंज और एप्पल को तुम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा बेटर फ्रूट है ऐसा नहीं हो सकता सो आपको सक्सेस अगर आपको हिट एंड फ्लॉप समझनी है आपको ये सब समझना पड़ेगा तब तुम बताओ वरना नॉर्मल ऑडियंस अरे उसकी इतनी ओपनिंग लगी है उसकी इतने वीकेंड हुआ है अरे भाई पहले तुम उसके पैरामीटर्स तो समझो फिर बात करो और जो बची कुची आधी वो होता है इंक्विजिटिवनेस होती है या क्यूरियोसिटी होती है पिक्चर देखने की वो क्रिटिक्स मार देते हैं
और वो रील्स भी मार देते हैं
हाँ क्योंकि अब उनको ये बता देना आप ये पिक्चर बिल्कुल मत देखो क्योंकि हमने देखी है हम आपको बता रहे हैं ऐसा अरे भाई क्या तुम ये मतलब मान के चल रहे हो तुम्हारी जनता ब्रेन डेड है तुम जो बोलोगे वो भेड़ चाल की तरह हड़ हड़ करके उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे जो तुमने बोली है क्योंकि तुम क्रिटिक हो ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास कोई बहुत भगवान की दी हुई ऐसी कोई दात है कि तुम जो बताओगे बिल्कुल सही होगा मूवी मेकिंग एंड मूवी व्यूइंग इज अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो पिक्चर तुम्हें पसंद है जरूरी नहीं है मुझे पसंद हो और मुझे पसंद है जरूरी नहीं तुम्हें पसंद हो इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव बेसिस our personal likings, our backgrounds, our upbringing, our aspirations in life, it can be very subjective and doesn't make that film ultimately good or ultimately bad in totality. It's very subjective. But to aadhi curiosity jo number maarte hai, baaki aadhi critic maar dete hai, apna hard opinion deke. तुम ये बताओ जिसने टिकट खरीदी है उसके पास पूरा हक है बताने का कि उसको ये पसंद आया ये नहीं पसंद आया बट ये बोल देना पिक्चर के अंदर कि भाई तुम मत देखो क्योंकि हमने देख लिया है ये बिल्कुल बकवास है दैट इज अ वेरी हार्ड ओपिनियन यू आर पुटिंग ऑन पीपल
कि दूसरे लोग इफ यू हैव गुड मार्केटिंग बजट एंड यू अंडरस्टैंड कि तुम इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो नैरेटिव
हाँ
तुम किसी को भी स्टार बना सकते हो
या That is very true. जैसे आपने बोला कि अगर मौका मिलता ही जा रहा है तुम जितनी मर्जी फ्लॉप दो 10 फ्लॉप दो तुम आके 11वीं अगर सेमी हिट भी दे दोगे ना तो कुछ लोगों के लिए इतना ही काफी हो जाता है बिकॉज आपका एक्सेस पॉइंट इतना सॉलिड है
कि 10 की 10 में तुम्हारा मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होगी मूवी हिट ऑफ लॉ फर्क नहीं पड़ता।
हाँ वो मार्केटिंग और तुम्हारी पीआर इतनी सॉलिड है बिकॉज ऑफ बैकिंग यू हैव नाउ देयर आर इफ यू दिस आई वाज टॉकिंग टू यू टिल नाउ अबाउट द फिल्म्स वे ऑफ इंटरप्रिटेशन कि कौन सी फिल्म अच्छी है नहीं है हिट है फ्लॉप है। अब मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे आपसे बात करूँ एज एन एक्टर्स तो होता क्या है आप एक रेस दौड़ रहे होते हो जब एक रेस दौड़ रहे होते हो उसके अंदर स्टैगर्ड स्टार्ट होती है किसी का वन स्टार्टिंग पॉइंट इधर होता है इधर होता है इधर होता है इधर बेसिस कि आपको कितना बड़ा डिस्टेंस 100 मीटर सबको कवर करना है अगर सबको एक साथ खड़ा करा दिया तो शायद नहीं हो पाएगा। अगर 100 मीटर की जो रेस होती है बेसिकली वो एक फ्लैट रन है आप उसमें सब साथ में खड़े हो अगर फ्लैट रन के अंदर आपको अहेड स्टार्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए 100 मीटर आसान हो जाएगा ना। तो आप मेरी जर्नी और मेरी सक्सेस और मैं नंबर 1 हूँ कि 2 हूँ कि 3 हूँ आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो जिनको हेड स्टार्ट मिला हुआ है
जो 100 मीटर पे खड़ी 80 मीटर पे।
हाँ तो आप उन लोगों के साथ कंपेयर करके कैसे बता रहे हो कि मैं नंबर 1 नहीं हूँ या नंबर 2 हूँ या 3 हूँ। तो मुझे ये जो नंबर 1 वाली गेम है ना मुझे बहुत अनॉय करने लग गई एक टाइम के बाद कि तुम मुझे उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो जिनको हेड स्टार्ट मिल रखा है जिनके पास मैं हर्डल रेस भाग रही हूँ वो प्लेन रेस भाग रहे हैं तो तुम हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस चल रहे हैं और तुम हमें एक रेस के अंदर डाल के मुझे बता रहे हो कि मैं नहीं हूँ टॉप 3 के अंदर और टॉप 5 के अंदर कि मैं मेरे को पोडियम फिनिश नहीं मिली है तो वो गलत है।
यू नो आई वांट टू टॉक अबाउट थप्पड़ अ बिट एंड वी विल कम टू नैरेटिव मेकिंग लास्ट। ओके मैं लिख लेता हूँ ताकि मेरा नैरेटिव वाला पॉइंट नहीं छूट जाए। सो I'll tell you क्यों थप्पड़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बिकॉज सेम थिंग मैंने भी मेरे आसपास इन माई फ्रेंड्स फैमिलीज मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज हर जगह सीन दिस एंड इट्स लाइक कि एक थप्पड़ ही तो है ये तो चलता रहता है। मतलब मैंने देखा है कि जहाँ पे हस्बैंड इज ड्रिंकिंग अल्कोहलिक मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एंड वो अपनी वाइफ को एक दिन बहुत पीने के बाद आ गए और एकदम ऐसे डरा दिया ऐसे करके उठा दिया मतलब तवा उठा दिया व्हाटएवर राइट एंड दो दिन बाद सब नॉर्मल हुआ कि ये तो हस्बैंड वाइफ का चलता रहता है बाकी लोग खड़े हुए
अल्कोहल इन्फ्लुएंस में कर दियो
अल्कोहल एग्जैक्टली टू नेवर क्वेश्चन्ड एज एन इंडिविजुअल बिकॉज ऐसे ही देख के बड़े हुए हैं कि कभी किसी ने सिखाया नहीं कि गलत है या सही है कोई बात ही नहीं क्योंकि माँ बाप के बात नहीं करते सिखाते बोलते नहीं कोई डिस्कस नहीं करते और हम कुछ भी पूछते तो अरे उनका हो गया छोड़ो 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 राइट
ये उनके अपने घर की बात है
एग्जैक्टली एंड देन आई सॉ थप्पड़ और मुझे वो बहुत हिट कर गई क्योंकि मैं लाइक बहुत लोग बोल रहे थे मैंने बहुत लोगों से पूछा आई थिंक आई आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी फ्रेंड कि एक थप्पड़ पड़ जाए तो क्या होगा एक थप्पड़ बहुत लोगों ने एक थप्पड़ ही तो एक थप्पड़ ही तो एंड देन मैंने उसको मेरी सिचुएशन में रख के देखा कि अगर मुझे एक थप्पड़ पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा लाइक एंड इट वॉज सच अ रियलाइजेशन कि नहीं है एक थप्पड़ भी यू नो नहीं मार सकता कोई एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। इट्स नॉट अबाउट कि एक थप्पड़ ही है छोटी बात है बड़ी बात है इट्स जस्ट लाइक मेरी विल के अगेंस्ट यू कांट हर्ट मी इट्स रॉन्ग
इफ इट्स वन टाइम
हाँ क्योंकि तुमने एक बार कर दिया तो बार बार करोगे आई डोंट वांट टू वेट फॉर दैट टाइम सो आई रियली लव्ड इट मेरा ओपिनियन बहुत स्ट्रांग था इस पे कि भाई
इतनी सी बात के लिए तुम घर नहीं खराब कर सकते अरे वो तो प्रेग्नेंट भी हो गई इतनी सी बात के लिए तुम प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे का सोच के ही रुक जाते तो मैंने कहा तुमने पिक्चर देखी नहीं एक तो पहली बात वो सिर्फ एक थप्पड़ के बारे में नहीं थी इट वाज एवरीथिंग दैट लेड टू इट
यस
एंड हाउ शी वोक अप आफ्टर दैट वन थप्पड़ रियलाइजिंग कि ये जो सब चीजें मैं नॉर्मलाइज करती जा रही थी ये नॉर्मल नहीं है और मैं सिर्फ मेरी गलती थी शायद कि मैंने नॉर्मलाइज कर दिया सबको ताकि ये हक समझ सके वो कि मेरे को मार सकता है तो एक थप्पड़ होता है वो आपके लिए एक है किसी और के लिए नहीं हो सकता बट हु डिफाइंस व्हाट इज द मिनिमम काउंट
या
मेरे को बताओ कि अच्छा एक थप्पड़ ठीक है दो नहीं ठीक मतलब ये कहाँ का तुम्हारा डिसीजन यूनिवर्सल डिसीजन कैसे बन गया। मेरे कैरेक्टर के लिए थप्पड़ में एक थप्पड़ ही काफी था मैं दूसरे की वेट नहीं करना चाहती थी जागने के लिए आपके लिए दूसरे का वेट करना है वो ठीक है आप दूसरे की वेट करना है क्योंकि एक आया दूसरा भी आएगा कभी ना कभी तो आने वाला है तो आपकी मर्जी है मैं एक पे रुक जाना चाहती थी तो वो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी डिसरिस्पेक्ट एक थप्पड़ पे स्टार्ट हो जाती है, आपकी नहीं होती होगी, आप में ज्यादा क्षमता है टॉलरेट करने की तो आप रखो, बट सबकी नहीं हो सकती ना, तुम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो मेरी जो फाइट थी, ये मैंने उस टाइम पे भी मैंने बहुत औरतों के साथ करी है, मेरे खुद की फैमिली के अंदर आगे लोगों ने, हाँ वो बच्चा होने के बाद तो उसको साइड, मैंने कहा तो आप चाहते हो कि वो बच्चे को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर लेके आए जहाँ पे औरत की इज्जत कम है, वो बच्चा बड़ा क्या क्या सीख लेके बड़ा होएगा, वो बड़ा होगा या होगी वो उसकी लाइफ में भी यही सर्कल रिपीट होगा, क्योंकि उसने यही देखा है बड़े होते हुए, तो उसको लगेगा यही नॉर्मल है। तो तुम एक एक नई जान को इस दुनिया में इस एनवायरनमेंट में लेके आना चाहते हो जो आपको ओके नहीं लग रहा, बट क्योंकि नई जान आ गई है अब इधर तो आपको लेना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगी वो बात। तुम अपने साथ साथ एक और लाइफ की जो आगे अपब्रिंगिंग है वो खराब कर रहे हो। सो फॉर ऑल दीज रीजंस मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस पिक्चर को करना, उस पिक्चर के साथ खड़े रहना, और वो उस पिक्चर के बारे में जो मुझसे डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। आई विल नॉट से कि यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग, आई विल से कि आपकी टॉलरेंस लिमिट ज़्यादा है, मेरी नहीं है, तो मेरी इतनी ही है और वो इतनी रहेगी।
आई अग्री विथ यू, किसी किसी की टॉलरेंस होती है, किसी के लिए नॉर्मल है, किसी के लिए नहीं है।
हाँ.
कोई एक थप्पड़ पे, कोई चार थप्पड़ पे, कोई दस थप्पड़ पे, कोई कभी ना, सबका अपना अपना है,
अपना अपना है,
देयर इज नॉट राइट रॉन्ग। आई एम जस्ट टेलिंग आई रियली लव्ड इट बिकॉज आई थिंक मैं उसके हद से और ज्यादा कॉन्शियसली इस बात का ऐसे हो गया कि मैं भी लाइफ में कभी ये नहीं करने वाला, एंड दैट इज like movies had such impact on
it
you
does, it does.
Itna choti si baat hai, it's not like a
it does.
Movie dekh ke aage nikal jao,
but in country like India jahan pe matlab agar Salman Khan ne ek bari tere naam kar di to sadak pe nikle aur aadhe ladko ka center parting hairstyle hai, to the movies have this kind of impact in our country, and that's why as actors, yes, you have the liberty to experiment with characters, with stories, but you can never ignore, you like it or no, you can never ignore that there is a sense of responsibility that comes, because hamari country ke do major religions jo hain wo hai films and cricket. So if you're a film star or you're a cricket star, you by default have that extra baggage of responsibility, you like it or no. Kuch actors ki aankhon mein dekh ke aapki performance level badh jata hai, matlab intimidate nahi hote ho, at least mujhe nahi laga aisa. Wo Mr. Bachchan ki aankhon mein perform karke dekh ke perform karna na gave me a high, and I kind of like really enjoyed it, which I continued enjoying in Badla later. That is what I call chemistry that I had with him from the first film to the second film, which I really loved between that action and cut. And I would want to experience it again. So wo jo performance high is what I remember of working experience with him. Just looking into his eyes and performing was
gave me a high. Sabse achhi baat kya hai? What do you love the most?
He will never make me feel like कि उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि वो मतलब forget about being the legendary actor, वो ऐसा भी नहीं शो करते मुझे कि वो
लाइफ ज़्यादा देखी
है। हाँ, लाइफ ज़्यादा देखी है उन्होंने, कि वो मेरे से एक एल्डर जनरेशन की तरह बात कर सकते हैं। वो मुझसे ऐसी बात करते हैं जैसे कि कोई और अभिषेक हो, तो अभिषेक भी मजाक उड़ाता है, मुझे याद है मनमर्जियां के टाइम बोल रहा था कि आई नो हर एज माई फादर्स फ्रेंड, सो दैट इज हाउ द रिलेशनशिप आई डेवलप्ड विद बच्चन सर, दैट आई कैन सिट एंड टॉक टू हिम कैजुअली लाइक एनी अदर पर्सन ऑफ माई एज ग्रुप।
एडवाइस नहीं देते वो कोई?
कोई नहीं,
अमिताभ बच्चन सर कुछ
बिल्कुल
नहीं,
भी नहीं, कोई एडवाइस नहीं देते।
मैंने देखा है ऐसा एडवाइस लेते
नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं, मैंने मांगी भी नहीं, उन्होंने दी भी नहीं, बिकॉज माई आइडिया ऑफ showing respect and love is I just want to spend as much time with you. The same thing I followed as much as I could with Shah Rukh sir. I just wanted to spend time with him. And I think I just got lucky ke Donkey ek aisi film thi jiske andar mere number of days, shooting days were as much as Shah Rukh sir. So kyunki pure picture mein hum dono saath hi hain start to end. So I had all the time I could over the span of 2 years to spend with him. So my way of showing him love, like I mean, मेरे को दिखता था आसपास पे, चाहे वो बच्चन सर के आसपास हो, चाहे शाहरुख सर के आसपास हो, मतलब लोग ऐसे डुल जाते हैं कि मतलब पैरों में बैठ जाएंगे, कि मतलब ऐसे सर आप तो ये वो, एंड मुझे ना पता नहीं क्यों, वो हो सकता है उनका तरीका हो दिखाने का, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है सही है, बट मेरे लाइफ में मुझे वो बहुत सुपरफिशियल लगता है, मैं को नहीं लगता मैं वो कर सकती हूँ। मेरा तरीका बस यही है कि मैं बस आपसे आपकी बातें सुनना चाह, आप कुछ भी बात करो मुझे सुनना है, मैं बैठ के सुनना चाहती हूँ आपसे, आप बस आप बोलते रहो कुछ ना कुछ।
क्या सबसे सबसे बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन बाहर की दुनिया से एंड जब साथ में काम किया शाहरुख सर के साथ, तो शाहरुख खान सर की सबसे ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात है जो उनको वो बनाती जो वो है? बिकॉज लेट्स एडमिट द फैक्ट राइट, अभी ही इज ओल्ड नाउ एंड ही वो कितने सालों से ये कर रहे हैं और अभी भी उनकी मूवीज का क्रेज वैसा ही है. मतलब दो तीन तो एक्टर्स आके चले गए, उनका सीरीज पीक भी आके चले गया, बैक टू बैक जनरेशन आ गई, बट वो आज भी उनकी उनका क्रेज भी वैसा है, उनका स्टारडम भी वैसा है, उनकी एक्टिंग भी वैसी है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है और बढ़ती जा रहा है सालों साल. लाइक एंड आई लव हिम, लाइक इट्स वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन लिस्ट हमारी की वन डे मेरे को उनसे बात करनी है, या मेरे को एक दिन बात करनी है उनसे.
मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो एक्टर्स हैं, लाइक पता नहीं काम करने को मिले उनसे ना मिले ठीक है चलेगा, बट मुझे ना उनके साथ बैठ के चिल करना है.
सेम,
कितने लोग उनके साथ सर बैठ के चिल करना चाहते हैं शाहरुख सर के साथ, वो मतलब क्योंकि पता है कि काम वाला बिकम्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मुझे बैठ के इनके साथ ना चिल करना है बस. सो वो जो एस्पिरेशन है लोगों की वो बहुत यूनिक
कैसे बनाई है, व्हाट डू यू थिंक, लाइक ऐसा वो क्या करते हैं कि उनके इतना बड़ा ऑरा बन गया है?
माय इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाटएवर लिटिल आई नो ऑफ हिम एंड सीज नो ऑफ हिम एंड सीन ऑफ हिम इज इट लॉट कम्स फ्रॉम सेल्फ एश्योरेंस, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है ना अपने आप पे, आई नो हु आई एम एंड आई नो हाउ गुड आई एम, आई नो माई वीकनेसेस, आई नो माई स्ट्रेंथ्स, आई नो मेरे क्या बस की है, आई नो मेरे क्या बस की नहीं है. वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस एंड अवेयरनेस जो है ना उनकी, ऑब्वियसली एडिड बाय बींग वेल रेड, ही इज वेरी वेल रेड. मतलब वो आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे कि देखो मैंने 50 ये किताबें पढ़ रखी हैं, 100 ये चीज़ें देख रखी हैं, बट व्हेन यू टॉक टू हिम यू कैन सेंस दैट ही हैज़ रेड अ लॉट. सो हिज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग कि मैं बेस्ट हूँ, वो एडेड विद द नॉलेज एंड द स्टफ दैट ही हैज़ रेड अराउंड इज द रीज़न बिहाइंड दिस सुपर स्टारडम दैट हैज़ गॉन थ्रू डेकेड्स एंड प्रॉब्ली विल गो ऑन फॉर मोर. सो दैट इज़ माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हिम, कि जो अपने आप में कॉन्फिडेंस है ना उनका, दैट्स अमेजिंग. नो देर बी लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक हिज ओपिनियन ऑन मार्केटिंग, यू नो लाइक विच आई एम ह्यूज फैन ऑफ, एवरीबडी इज ह्यूज फैन ऑफ हिज मार्केटिंग स्किल्स राइट,
एवरीबडी इज,
या सो ही लाइक ही यूजेस डिफरेंट मार्केटिंग और पब्लिसिटी टूल्स फॉर हिमसेल्फ, इन द सेंस कि अच्छा अगर इस टाइम पे बोर्ड्स और होर्डिंग्स से मार्केटिंग होती है तो मैं बोर्ड्स और होर्डिंग्स खरीद लूंगा. कुछ सालों के बाद अगर लोगों से मार्केटिंग होती है तो मैं उन लोगों को खरीद लूंगा. सो बेसिकली ट्राइंग टू जस्ट यूज वॉट एवर इज द मार्केटिंग टूल फॉर देम, फॉर हिम इट्स मार्केटिंग टूल दैट ही वुड वॉन्ट टू यूज. आई वुडंट वॉन्ट टू सी आई एम समवन हुम लाइक विल बी लाइक वाई शुड आई एंटरटेन you know this, why should I try to hard sell or put force myself onto this. He's like, see, you are also a marketing tool for say an XYZ brand, say you are a marketing tool for all the brands you're endorsing.
True.
So they are using you as a marketing tool. Likewise, you are also a brand in itself, so you have to use these marketing tools that keep changing with time to present yourself as a brand, and I stood converted.
मैंने बहुत मेहनत करके हर एक्टर जैसे एक प्रोडक्ट बनाया, वो हमारी मूवी है. एंड दिस वाज अर्ली टाइम्स, लाइक आई थिंक वाज लाइक वेरी यंग, इट लुक लाइक वेरी यंग प्रॉब्ली, आई डोंट नो व्हाट टाइम, बट उस टाइम का ऐसा कि हर एक्टर के जैसे मैंने भी एक प्रोडक्ट बनाया बहुत मेहनत करके, और सबने उतनी मेहनत करी, पर मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि मैं इसके बाद मेहनत असली स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को बहुत मार्केट करूंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, अपना पैसा लगा दूंगा, मैंने जो कमाया जो करा सब लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट में मैंने मेहनत करी और ये हर जगह पहुंचना चाहिए. उसके बाद अच्छा लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता. और बोलता है कि आई थिंक यही एंड उन्होंने फिर ऐसा बोला कि आई थिंक यही डिफरेंस है बिटवीन अदर एक्टर्स एंड मी, कि मैंने उसके बाद भी उतनी मेहनत करी जितनी लोगों ने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाने में लगाई, एंड विच sort of like hit a chord and you just said give a sahi hai. Quick question, there are movies like Thappad and पिंक एंड देन अब आजकल एनिमल बहुत ज्यादा और उस पर बहुत काफी डिबेट चल रहा है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बाय द वे लेट मी गिव इट टू यू. सोसाइटल इम्प्लीकेशन उस पर कैसे होंगे क्या होंगे? लाइक आई वांट टू आस्क यू दैट. लाइक इट वॉज अ ग्रेट मूवी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बहुत अच्छे करे, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, कैरेक्टर्स ने जो खेलना था वो खेला, मासी थी, सबको पसंद आई. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
सो आई डू हैव अ टेक ऑन इट, बट आई विल टेल यू अ टेक बेसिस. मैंने देखी नहीं है पिक्चर वो अभी तक.
एनिमल नहीं देखी?
नहीं देखी है, बिकॉज़ आई वाज शूटिंग अब्रॉड
एंड आई केम. आप थप्पड़ कर रहे हो और फिर एनिमल देखोगे तो यू विल बी.
लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी टू मच अबाउट इट, बट सी एज आई
सेड
आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, सो आई डोंट हैव, एज आई सेड आई अग्री टू डिसएग्री टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई नो देयर नॉट मेनी पीपल लाइक दैट इन आवर कंट्री. ठीक है, अब जैसे मैंने बताया हमारी कंट्री के अंदर इट्स नॉट, डोंट कंपेयर टू हॉलीवुड कि तुम्हें गॉन गर्ल पसंद आती है तो तुम कैसे नहीं पसंद कर सकते. ये यू आर केटरिंग टू अ डिफरेंट ऑडियंस. हॉलीवुड के अंदर लोग एक हीरो के हेयर स्टाइल तेरे नाम में आने के बाद सेंटर पार्टिंग करके नहीं घूमते हैं. ठीक है, तो जा सिमरन जीले जिंदगी नहीं होता है वहां पे एक पिक्चर रिलीज होने के बाद. उसका डायलॉग ऐसे यूज नहीं करते हैं लोग लूजली लाइफ के अंदर, और वो उसी तरीके से लड़की को चेस करना नहीं स्टार्ट करते हैं जैसे लड़का चेस करता है लड़की को. हमारे कंट्री में होता है ये हमारी रियलिटी है. हाँ, ये तो तुम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से कंपेयर करके नहीं बोल सकते अच्छा व्हाई आर दीज सूडोज टॉकिंग अबाउट यू नो एनिमल व्हेन दे कैन एंजॉय गॉन गर्ल एज एन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ऑल ऑफ दैट. तो पहली बात तो ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करो कि ऑडियंस.
तो ऐसी मूवीज बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए?
ऐसी मूवी बननी चाहिए जिनका आउटकम जो है वो उस तरह का होना चाहिए जो तुम चाहते हो लोग जिससे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि तुम आई नो दैट्स रॉन्ग. सोसाइटी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म्स दैट वे, और इट शुड हैव इट्स ओन फिल्टर ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस कि इससे इन्फ्लुएंस होना है. इस मॉरल कंपास उनका खुद का बड़ा सॉलिड होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली नहीं है. तो अब जो रियलिटी है मैं उसको रख के दिमाग में आई नीड टू एक्सरसाइज दिस पावर, बिकॉज बॉलीवुड और बींग अ स्टार एक्टर गिव्स यू दैट सॉफ्ट पावर. And when with power comes responsibility. So it's my opinion and I will, and I'm not one of those who will tell XYZ actor उसे नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना. उसका अपना choice है. And we are in a free country and you have freedom of choice. Yeah. What I wouldn't do it is what I'm saying. But like I know girls who were totally fine with animal and they really enjoyed it. And I know men who were triggered by animal and said ki ye kya bakwas
hai, disturbing hai.
I have seen these kind of reactions from the gender vice like opposite to what you would have expected, and that's why I say it's your you should agree to disagree.
Yep and I think, but people, you rightly said, you know, people should actually have their own filter.
Yeah
to see ki kya sahi hai kya galat hai, kisko movie mein chhod ke aana hai, kisko ghar leke aana hai, because there are few things which are not right.
Yeah,
and people should not do it and just enjoy. If you like it, watch different stuff for different things. Doesn't mean you can do that. Yeah. Like there have been, and you know what I feel really amusing is ki there have been, we've seen movies jahan pe politics ke bare mein, businessmen kya rahe hain, power ke upar hai, Telugu, Bollywood, har jagah jahan pe बहुत गलत तरीके से हीरो सेलिब्रेट किया जाता है कि वो माफिया बन जाता है. तो ऐसी टाइप की मूवीज पहले भी बनती थी. ऐसा नहीं कि हर को जाके माफिया बन गया. पीपल वर एबल टू डिफरेंशिएट दैट. नाउ आई थिंक बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे फील कि ये कूल है क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं.
या कूलनेस के ऊपर काफी चीजें हमारी ओके हो गई हैं, नॉर्मलाइज हो गई हैं जस्ट बिकॉज़ दे आर कूल. सो दैट जस्ट बिकॉज़ इट्स कूल इट्स नॉर्मल, नो. You should, as I said, it's a very strong moral compass that's required. Unfortunately, not everybody in our country has that.
We need to develop that.
Yeah.
With the kind of movies that you do.
Yeah. I hope so.
Well, thank you so much. I just loved speaking to you and I think I can speak to you for another 2 hours.
Chalo.
Because aap bahut hi badhiya baat karte ho.
Part 2 karenge.
Karna chahiye yaar. मैं कुछ नहीं पूछा इससे, मेरी टीम मुझे मारने वाली है इसके बाद.
नो बट वी हैड अ गुड फन फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन विच आई थिंक इज मोर ऑर्गेनिक.
यस आई लव्ड इट.
या
आई लव टॉकिंग टू अनदर लियो.
ओह यस,
इट जस्ट नेचुरली केम. थैंक यू सो मच,
यू आर एन
अमेजिंग अमेजिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट. आई वाज जनरली आई वाज सुपर नर्वस.
ओह यार,
लाइक मतलब वी हैव हैड like the biggest politicians, the biggest business people. But I was very nervous for this.
Because
it was an out of comfort zone conversation. Tha, but you made it so good. Thank you so much for filling in conversation.
Thank you so much.
ये episode end तक देखने के लिए हमें comments में बताओ कि और कौन से guest हैं जो आप देखना चाहते हो और उनसे हम क्या question पूछें. जिससे हम आपको बेहतर तरीके से सर्व कर पाए। और इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है कि हम सब एक बेहतर इंसान कैसे बने वो बरकरार रहे इवन इन अ बेटर वे। थैंक यू सो मच। ये एपिसोड प्लीज किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।